जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा आंचल में भर।
ओम शांति। इस जीवन में हम जो ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं और उस ज्ञान को जितना हम अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, यूज करते हैं, उतना उससे जो शक्ति मिलती है वो शक्ति से हम परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के शब्दों में ही माया भी तभी वार करती है जब हमारी स्वस्थिति कमजोर होती है। शरीर की भी जब प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है तभी बैक्टीरिया वायरस बीमारी को लाते हैं, चाहे वो सर्दी टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस एड्स की बीमारी हो। वो तभी होती कि जब शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर है। इसी तरह से जब हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती, संकल्प और विकल्प हमारे में चलते रहते हैं, उससे ऊर्जा पैदा नहीं होती तो शरीर और आत्मा दोनों बीमार होती है। इसीलिए कहा जाता है यूज इट आर लूज इट, यूज इट आर लूज इट। इसका अर्थ है उपयोग करो या आपसे वो चीज खत्म हो जाएगी। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में यही अंतर है कि भक्ति में हम सुनते आए, खूब सुना, घंटों सुना, पर परिवर्तन बहुत कम हो पाया। पर ज्ञान मार्ग में जो भी हम सुनते हैं उसके स्वरूप में टिकते जाते हैं। बाबा के दो महान वाक्य जो इस आज के इस परिचर्चा को मैसेज देते हैं, जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। इसका अर्थ है कि जो रोज ज्ञान का मंथन करता है वही अर्जुन जैसा निशाने पर तीर लगा सकता है। अपनी घोट तो चढ़े नशा, जो रोज अपनी घोटता है, ज्ञान को प्रोडक्ट बनाता है और उसी में ही नशा चढ़ सकता है। और जब तक वो नशा नहीं आता तब तक हम दूसरे नशों के आदि रहते हैं और जीवन के प्रॉब्लम्स में रहते हैं। नशा केवल बाहरी नशा नहीं होता, तंबाकू सिगरेट ड्रग्स का, कई चीजों का आदमी को नशा रहता है। अहंकार भी एक नशा है, वो भी व्यक्ति को खत्म करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ज्ञान का मंथन ठीक नहीं कर रहा है। तो शुरू करते हैं कैसे हम इस ज्ञान का यूज करें, प्रयोग करें और उस प्रयोग को करके हम उसके स्वरूप में बनते जाएं। अगर बाबा के इस सीजन की मूल्यों को देखें, जो इस सीजन में अव्यक्त मूल्यां चली, सबका मेजर सार यही था कि हम अपने चलन और चेहरे से अपने में स्वपरिवर्तन लाकर चलन और चेहरे से ज्ञान को रिफ्लेक्ट करें। ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान लोगों को ऑटोमेटिक मिले। हमारे वाइब्रेशन, हमारा स्वरूप से लोगों को ज्ञान मिले, ये अल्टीमेटली बाबा चाहता है। और इसके लिए हमें रोज पुरुषार्थ करना है। इसीलिए तीन स्टेज हैं, जानना, प्राप्त करना और समाना। पहले हमें सब्जेक्ट मिला ज्ञान, उससे हमारे को समझ आई, अंडरस्टैंडिंग आई। ज्ञान के बाद योग, उसका जितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना प्रयोग करते हैं, उतना अनुभव बढ़ता है, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फिर तब तीसरा चीज आती है धारणा, उसका स्वरूप हम बनने लगते हैं। और जब तीनों चीजें ठीक हो जाती तो सेवा एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। ज्यादातर ये होता है कि हम सेवाओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे तीन सब्जेक्ट कमजोर रह जाते हैं, और इसके कारण हमारे अंदर से जो वाणी संकल्प निकलना चाहिए उसमें शक्ति नहीं होती। सेवा का अर्थ है स्व और सेवा का बैलेंस रहे। स्व के स्थित में रहकर हम जो सेवा करेंगे उस वाणी में शक्ति होगी और दूसरे को वो तीर लगाएगी। सबसे श्रेष्ठ खजाना जो परमात्मा ने हमें दिया है वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, थॉट्स। हमारा हर विचार ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, और पूरा गेम जो बाबा ने हमें सिखाया है, लाइफ का सिखाया है, वो है हमारे पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थॉट्स, यानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पावरफुल यानी शक्तिशाली, और पर्पसफुल यानी उस खास मकसद को लिए हुए विचार ही ऊर्जा पैदा करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हर दिन हम एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट से हम एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर से हम एक्सपीरियंस बढ़ाएं, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर एक्सपीरियंस, और जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो एम्पावरमेंट आएगा, जब एम्पावरमेंट आएगा तो इनरिच होंगे, जितना इनरिच होंगे उतना इनलाइटमेंट होंगे, जितना इनलाइटमेंट होंगे उतना एक्सपर्ट बनेंगे, जितना एक्सपर्ट बनेंगे उतना एंजॉय करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे उतना ईस के साथ रहेंगे। फिर से मैं बताता हूं हिंदी में, पहले ज्ञान को लीजिए, उसको अपनी लेबोरेटरी में जाइए। हम सबको बाबा ने रिसर्च लेबोरेटरी दी हुई है। लेबोरेटरी कौन सी है हमारी? अंतर्मुक्ता की गुफा। ज्ञान को सुना, मुरली का जो भी हमने पॉइंट अच्छा लगा उसको हमने अंदर अपने लेबोरेटरी में ले गए, अंतर्मुक्ता की गुफा में, और अशरीरी की स्थिति अंदर लिया, उस पॉइंट को एक्सप्लोर किया, मंथन किया। जितना मंथन करने की आदत आ जाएगी उतना हमारी नेचुरल स्टेज आती जाएगी। जितना हम मंथन करेंगे उतना हमारा अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस। जितना हमारा अनुभव बढ़ेगा उतना हमारे में शक्ति आएगी, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का अर्थ होता है कि आपके विचार आपके हाथ में है, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने जिंदगी के मास्टर हो। थॉट्स और बोल, विचार और बोल आपके हाथ में है। थॉट्स एंड वर्ड्स आर अंडर योर कंट्रोल। इम्पावरमेंट के बाद आता है हमारे में इनरिच हो जाते हैं, जो बाबा कहता है संपूर्णता आ जाती है, स्टॉक जमा होता जाता है। जितना स्टॉक जमा होगा उतना हमारी प्रकाश लाइट बढ़ती जाएगी। इनलाइटमेंट का अर्थ है हमारे अंदर का प्रकाश बढ़ता जाएगा। जितना हमारा इनलाइटमेंट होगा उतना हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, और एक बार किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो व्यक्ति उस कार्य को एंजॉय करता है, खुशी से करता है। और जब खुशी से करते हैं तो हमारे में ईस, धैर्यता आ जाती है। और जितना ईस में रहते हैं उतना हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। बीमारी कब आती है? बीमारी कब आती है? जब हम ईस को छोड़ देते हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, डिस ईस। बीमारी क्या हुई? डिस ईस। ईज यानी बाबा ने हमें यहां भेजा है कि हर कार्य अच्छी तरह धीरे धीरे खुशी से करना, ईस के साथ। इंग्लिश में कहते हैं ईस के साथ करना। खाना खाओ ईस के साथ, धीरे धीरे खाओ, एंजॉय करो, कार्य करो उसको भी एंजॉय करो, नींद करो उसको भी एंजॉय करो। पर हम क्या करने लगे? धीरे धीरे हर कार्य को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं ज्ञान में आने के बाद भी व्यक्ति हर चीज को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। बाहर वालों के तनाव तो अलग हैं, पर मैंने देखा ज्ञान वालों के भी तनाव अपने अपने हैं। अब कईयों के तनाव, एक बार जैसे एक बहन आई, वो कहती है कि मैं आज दिन भर क्लासेस सुन रही हूं पर बहुत मेरे अंदर हलचल है। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा मैं क्या करूं, बिंदु रूप बनूं कि फरिश्ता बनूं कि ज्ञानी स्वरूप बन जाऊं, क्या करूं, क्या अनुभव करूं? तो वो क्या कर रही थी कि हर चीज को पकड़ के एकदम उसका अनुभव करना चाहती थी और जल्दी जल्दी करना चाहती थी। अब ये जिंदगी का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, हम सोचें कि हर चीज को मैं एकदम जल्दी जल्दी कर दूं तो उसका अनुभव हम ठीक से नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो बाबा की मुरलियां चली उसी में से जो बाबा ने कहा, एक गुण, एक शक्ति या एक पॉइंट कोई सा भी लेकर हम रोज मुरली को सुनकर उसको अपने में यूज करें। आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है वो लीजिए, चाहे चार पेज की मुरली सुनी, चाहे आपके पास समय नहीं है तो एक पेज की सुनी। उन चार पेजेस में से जो आपको लगता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मेरे अंदर कमी है इसकी, उस पॉइंट को ले लीजिए। आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरे को शक्ति देगा, उसको ले लीजिए। और फिर उसको नाश्ते के पहले, मुरली के बाद 10-15 मिनट अपने लेबोरेटरी में बैठ जाइए, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाइए। अगर मुरली सुनकर एकदम चले गए, उठ के चले गए, मंथन नहीं किया, तो हो सकता है कि थोड़े समय बाद वो पॉइंट भूल जाए और फिर आधे दिन तक पॉइंट हम सब भूल जाते हैं कि आज अल्टीमेटली क्या कहा था। तो इसीलिए मुरली सुनी, एक पॉइंट लिया और उसके स्वरूप में प्रैक्टिस की और फिर दिन में 3-4 बार उसको रिपीट किया, या तो पेज पे लिख लिया या मन में ही डाल दिया और जब समय मिले उसको मैंने देखा। तो दिन के एंड तक वो पॉइंट का मेरे में 50% आ जाएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस की, उसी को 7 दिन तक प्रैक्टिस की तो वो मेरा फाइल बना देगा, वो मेरा स्वरूप बना देगा। और जब तक हमारे अंदर वो अंदर तक नहीं जाता तो हमारे ओल्ड प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, जो 63 जन्मों के संस्कार हैं द्वापर से लेके अभी तक के, वो जल्दी खुल जाते हैं। बाबा इसीलिए कहता है कि जब तक हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा तो तब तक हम अपने पुराने प्रोग्राम से ही ज्यादा काम करते हैं, और इसीलिए जब कभी भी कोई घटना देखते हैं तो रिएक्शन जल्दी आते हैं, क्योंकि वो 63 जन्मों की फाइलें जल्दी खुल जाती है। अब जैसे जैसे हम ये नया चीज देते जाएंगे और उसको पर्सनालिटी में डालते जाएंगे, तो वो पुराने जन्मों के संस्कार मर्ज होते जाएंगे, स्मृति विस्मृति इसी का गेम है। सब अंदर रिकॉर्डिंग की हुई है, उस आत्मा में सब कुछ है, पर ओल्ड फाइल को बुलाना है और नई फाइल को एक्टिवेट करना है। जितना हम भविष्य के संस्कारों को इमर्ज करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का आधार बनते जाते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म देखें हमारे शरीर में, शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन मस्तिष्क ब्रेन है। ब्रेन के हायर सेंटर्स पर आत्मा बैठकर काम कर रही है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, मन बुद्धि संस्कार है, माइंड इंटेलेक्ट सबकॉन्शियस MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वर्किंग थ्रू हार्डवेयर द ब्रेन। हमारा सॉफ्टवेयर आत्मा है, ब्रेन हमारा हार्डवेयर है। आत्मा में जो विचार आ रहे हैं, बुद्धि उसको फिल्टर करती है और फिल्टर करके हम ब्रेन में भेजती है, और फिर मस्तिष्क उसको शरीर के अंगों में भेजता है जिससे हम कार्य करते हैं। हर विचार ऊर्जा को लेकर चलता है। अगर मेरे विचार ठीक नहीं है, कमजोर हैं, चिंता वाले हैं, गुस्से वाले हैं, तो शरीर में भी वैसे ही तत्व पैदा होंगे और बीमारी को जल्दी लाएंगे। इसीलिए आजकल बीमारी का कारण केवल बाहरी इन्वायरमेंट नहीं है, डाइट और एक्सरसाइज ये दो मेन फैक्टर हैं, पर मेजर फैक्टर है हमारे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए कभी कभी आजकल हम कहते हैं, कई लोग पूछते हैं हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो आजकल हम लोग एक सेंटेंस में बोलते हैं, ये जरूरी नहीं कि क्या खा रहे हो, ये जरूरी नहीं कि क्या खा रहे हो, पर जरूरी है कि आपको क्या खा रहा है। आप कुछ भी खाओ पर अंदर क्या खा रहा है वो जरूरी है। जब तक उसको ठीक नहीं किया, बाहर को ठीक किया, तो वो 25% काम करता है। सिंपल चीज लें, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आजकल काफी शब्द कॉमन हो गया है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग की बीमारी को लाता है, कई तरह के स्ट्रोक्स और कई तरह की बीमारियां, जिसमें स्ट्रोक्स, आर्थराइटिस, कैंसर को लाता है अगर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म देखें, 25% कोलेस्ट्रॉल हमें खाने से मिलता है, पर 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। अब मैं खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर दूं कि चर्बी वाला खाना नहीं खाऊंगा, फिर भी 75% कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाएगा ही बनाएगा, जो भी हम खाना खाते हैं। अब मैंने खाने से तो कंट्रोल कर लिया, पर यहां कंट्रोल नहीं किया तो उसका लेवल बढ़ा ही रहेगा। इसीलिए ये जरूरी है अभी कि दोनों को ठीक करें, खाने से भी ठीक करें और यहां माइंड से भी ठीक करें। ये देखा गया, जब लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ट्रैफिक जाम रहता है, निकल नहीं पाते, और उनकी फ्लाइट है और ट्रेन है, और जब 10वीं और 12वीं का एग्जाम होता है, तो माता पिता के कोलेस्ट्रॉल देखे गए। देखा गया कि उस समय कोलेस्ट्रॉल उनका खूब बढ़ गया। अब आप देखो, खाने में कुछ नहीं था, बढ़ा कहां से, जो मन में उनको विचार आए चिंता के, बच्चे के या ट्रैफिक में फंसे हुए कि अब निकलेंगे कैसे, तो उससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसीलिए आजकल कई जगह बड़े शहरों में पहले लिखा रहता था ट्रैफिक लाइट से ऊपर स्टॉप, रुकिए, आजकल बड़े शहरों में लिखा रहता है रिलैक्स। इसका अर्थ क्या, जैसे ही आप रेड लाइट के ऊपर पहुंचे हो आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, 2 मिनट 3 मिनट मैं अगर रिलैक्स करूंगा तो मेरे शरीर के अंदर प्रतिक्रिया नॉर्मल रहेगी। तो खेल मन और शरीर का चलता रहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। अब इसमें प्रॉब्लम तब आता है कि जब हम मन में कई तरह के विचार पैदा करते हैं। पहला, हमेशा चिंता रहना बिना किसी कारण से। थोड़ी बहुत तो चिंता ठीक है, पर बिना कारण से चिंता रहना, बिना किसी कारण से खुशी गायब हो जाना, बिना किसी कारण से सीरियस रहना, मूड ऊपर नीचे होना, बार बार गुस्सा जल्दी आना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन रहना, हमेशा क्रिटिसाइज करना, दूसरे की गलती को देखना, ये सब बीमारी को जल्दी लाते हैं। अंदर से खालीपन महसूस करना, सब कुछ होते हुए भी अंदर खाली है, तो ये सब चीजें बीमारी को जल्दी लाती है। इसीलिए हृदय रोग की बीमारी भी उन लोगों को ज्यादा आती है जो जल्दीबाजी करते हैं, हर चीज में समय के साथ रेस करते हैं, सोचते हैं मैं समय के पहले ही हर चीज को ठीक कर लूं। वो कर लेते हैं पर कभी कभी कर नहीं पाते, सफल जरूर हो जाते हैं पर सफल कहां होते हैं, शमशान में जाके सफल होते हैं। शमशान में बोर्ड लग जाता है, बहुत इन्होंने धन प्राप्त किया, मिलियनर बन गए, पर हार्ट अटैक हो गया और डायबिटीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि अपने को ज्यादा खींचा, शरीर की कैपेसिटी से मन की कैपेसिटी से अपने को ज्यादा खींचा और शरीर की कैपेसिटी थी नहीं, तो शरीर में बीमारी हुई। तो इसीलिए जरूरी है कि रोज हम एक पॉइंट को लेकर चलें, हमारा मन एक समय पर एक चीज को लेता है। अगर हम इसमें एक समय में 6-7 चीजें देने की कोशिश करेंगे तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए जब समय मिले एक पॉइंट को लीजिए, जो दादी गुलजार हमेशा बहुत अच्छा कहती हैं, अगर 4 पेज मुरली के याद ना हो तो सार को याद रखो, सार याद नहीं रहे तो वरदान को याद रखो, वरदान याद नहीं रहे तो स्लोगन याद रखो, स्लोगन भी याद नहीं रहे तो मुस्कुराना तो सीख लो। पूरा खेल काय का है, अल्टीमेटली क्या करना है, खुशी को पैदा करना है। जितना हम खुशी को पैदा करेंगे शरीर ठीक काम करेगा। खुशी जैसी खुराक नहीं, जो व्यक्ति जितना अच्छी तरह खुश रहता है उसमें बीमारी के चांसेस कम रहते हैं। अभी एक जो स्केल आया है बीमारी का, उस स्केल में उन्होंने नंबर दिए हैं। पहला है जीन्स, हमारे अंदर जो जीन्स हैं, जैसे अगर फैमिली के जीन्स हृदय रोग के हैं, कैंसर के हैं, डायबिटीज के हैं, तो मेरे को मिले -10। पर दूसरा नंबर उन्होंने दिया है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी आप हर घटना को कितना हंस कर लेते हैं, इजी लेते हैं, उसको उन्होंने दिए हैं 20 नंबर। अब मेरा अगर -10 भी है पर मैं हर घटना को खुशी से देखता हूं तो मेरे को क्या मिल गए, +20 मिल गए। और 100 नंबर दिए हैं उन्होंने, आपकी खुद की जिंदगी और घर की जिंदगी कैसी है। अगर घर की जिंदगी और खुद की जिंदगी अच्छी है तो 100 नंबर। अब आप बताओ 100 नंबर लेना है और जीन्स की चिंता हम ना करें, जो भी जीन्स मिले मिले। अब हम सिलेक्ट तो कर नहीं सकते कि मैं इस घर में पैदा हूं जाके, ये घर के मैं माता पिता ठीक हैं, इनको कोई बीमारी नहीं, इनके यहाँ जाके मैं आत्मा पैदा हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम अपने पेरेंट्स को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, पर हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ और घर की लाइफ को ठीक रखते हैं तो 100 नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस न लेते हुए एक पॉइंट को लिया, फिर दिन में उसको बार बार अपने इस कंप्यूटर में डाला। अब गलती कहां होती है स्टूडेंट्स, ज्यादा गलती मैंने देखा, अगर मैं अनुभव करना चाहता हूं, ज्यादातर मिस्टेक यहां होती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, बोलते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। अब क्या हो रहा है, ये मैंने बोला शांत स्वरूप हूं, मैसेज गया, आत्मा ने मैसेज दिया कि आज मुझे शांति चाहिए, मैसेज गया मस्तिष्क में, मस्तिष्क की फाइलें खुलना शुरू हुई कि इसको आज शांति का अनुभव करना है। मस्तिष्क ने संदेश देना शुरू किया शरीर को कि शांति चाहिए, इतने में मैंने बोल दिया शक्ति स्वरूप हूं। अब फिर दूसरा मैसेज गया कि नहीं नहीं शांति नहीं शक्ति चाहिए, अभी शक्ति वाली खुलना शुरू हुई, फिर बोल दिया प्रेम स्वरूप हूं। अब मन कहेगा इसको चाहिए क्या, कभी बोल रहा है शांति, कभी बोलता है शक्ति, कभी बोलता है प्रेम, इसलिए अनुभव उसका प्रोडक्ट नहीं बन पाता। हमारा मन एक समय पर एक चीज लेता है, इसलिए जब बैठें एक चीज को लीजिए, शांत स्वरूप हो, शांति के सागर से शांति आ रही है, शांति की किरणें पूरे शरीर में जा रही है, फिर उसको हर जगह फील करें, हृदय में फील करें, लंग्स में फील करें, और अनुभव करते जाएं कि हर जगह हर कोशिका में वो शांति जा रही है, फिर पूरे विश्व की आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन दीजिए। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं इनवर्ड अपवर्ड आउटवर्ड। मेडिटेशन क्या है, पहली स्टेज इनवर्ड, अंदर जाइए, फिर कनेक्ट करिए, अपवर्ड बाबा से कनेक्ट किया, फिर तीसरी स्टेज है आउटवर्ड, फिर उसको रिफ्लेक्ट करिए, अंदर ऊपर बाहर। और अच्छे 5 शब्द है इंग्लिश के, फर्स्ट इज इंटरनल, इंटरनलाइजेशन, अंदर गए, फिर आप उसको चैनलाइजेशन, उसको चैनलाइज करिए, चैनलाइज के बाद विजुअलाइजेशन, उसको विजुअलाइज करिए, फोर्थ है डिविनाइजेशन और फिफ्थ है रियलाइजेशन। इसका अर्थ है मन को एक संकल्प दिया, फिर उस संकल्प का पिक्चर बनाइए, फोटो बनाइए। हमारा ब्रेन फोटो को जल्दी लेता है, जिसको कहते हैं उसको इमेजिन करो, जैसे अगर हम सत्युग का इमेजिन कर रहे हैं कि सत्युग में मैं लक्ष्मी नारायण जैसा हूं, तो मैंने इमेजिन किया, संकल्प लिया, उसका फोटो बनाया लक्ष्मी नारायण का अंदर ही अंदर, और फिर उसको फील किया कि मैं हूं, जैसे ब्रह्मा बाप का था कि वो कहते थे मैं हूं, ये नहीं कि मैं बन रहा हूं, मैं हूं, तो माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, माइंड प्रेजेंट टेंस को लेता है। अगर मैं कहूं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो और गुस्सा आएगा। अगर मैं आपको बोलूं 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और काले मुंह का बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो क्या होगा, बार बार वो काले मुंह का बंदर ही आएगा। पर उसको नहीं सोचना है तो मुझे उसको कुछ नया देना पड़ेगा, मन को दबाना नहीं है, मन को अमन नहीं करना है, मन को सुमन करना है। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन का अर्थ है कि मेरे को एक भी विचार नहीं आए। विचार आएंगे, पर इसकी टेक्निक क्या है, इसको कुछ नया प्रोग्राम देना है, तब माइंड पुराने प्रोग्राम को छोड़ देगा। जो सिंपल एग्जांपल देते हैं, बच्चा चाकू से खेल रहा है, बच्चे से चाकू लोगे तो नहीं देगा, छीनने की कोशिश करोगे और पकड़ लेगा, पर उसी बच्चे को कुछ अच्छा खिलौना या चॉकलेट दिया तो वो छोड़ देगा और वो ले लेगा। इसी तरह से इस मन को भी 63 जन्मों के पुराने संस्कारों से खेलना अच्छा लगता है, उसमें ही जीना अच्छा लगता है, उसमें ही उसको कंफर्टेबल लगता है, इसलिए उसको छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है। अब हमें इससे छुड़ाना है तो क्या देना पड़ेगा, इसको कुछ अच्छा देना पड़ेगा, तो वो खुद ही छोड़ देगा और आगे बढ़ेगा। एक बहुत अच्छी कहानी है, दो चींटियां थी। एक चींटी शक्कर के पहाड़ पे रहती थी, एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी। एक दिन नमक के पहाड़ वाली चींटी शक्कर वाले पहाड़ वाली चींटी से मिलने आई। एक बार शक्कर के पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ वाली चींटी के पास गई, घूमने फिरने लगी और उसको बताया, देखो मेरे यहाँ चीनी है, कितना अच्छा उसका स्वाद है, और उसको इनवाइट किया नमक के पहाड़ वाली चींटी को कि तू भी आना और चख के देखना। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी उसके पास एक दिन गई और घूमती रही और उसको बाद में एक घंटे बाद बोला कि मुझे तो कुछ मिठास लग नहीं रही है। तो इस चींटी ने उसको बोला, तूने मुंह में कुछ रखा हुआ है क्या? उसने बोला, हाँ नमक का ढेला रखा हुआ है अंदर। ऐसा ही शायद हमारे साथ भी होता है, हम पुरानी चीजों को रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, तो उस मिठास को कैसे हम लेंगे। इसीलिए जब हम उसको नया चीज देते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारा पुराना संस्कार छूटता जाता है। तो विजुलाइज किया और उसको फील किया, उसको अनुभव में फील करो, तो तब जाके ये तीनों चीजें हमारे साथ चलती, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। और एक बार वो संस्कार बन जाता है तो वो खुद ही पुराने संस्कार को मर्ज करता जाता है। आप देखें इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट, सूरज रोज निकलता है, उसकी लाइट चारों तरफ जाती है, सूरज तेज है तो मैंने कैप लगा लिया, गॉगल्स पहन लिए, छतरी ले ली तो सूरज से बच सकता हूँ। उसी सूरज को मैंने लेंस के ऊपर लिया, कागज को नीचे रखा तो बर्न हो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी जो विचार चलते रहते हैं वो सूरज के समान है, कई तरह के विचार चलते रहते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन को, माइंड क्या है, फैक्ट्री है, मन क्या है, फैक्ट्री का काम करते, वो विचार पैदा ही करते रहते हैं, उसका काम ही है, उसका नेचुरल नेचर ही है पैदा करना, थॉट्स चलते रहेंगे। हमारे विचार कैसे पैदा होते हैं, दो तरीके से होते हैं। जब हम कोई नई घटना को देखते हैं, नए सीन को देखते हैं, तो मैसेज जाता है और विचार पैदा होगा। या पुरानी स्मृतियां, जब हम आंख बंद करके भी बैठे हैं, कुछ पुरानी स्मृति आई तो विचार पैदा होते हैं। दो तरीके से विचार पैदा होते हैं और कंटिन्यूस चलते रहते हैं। विचार बुद्धि में आते हैं, बुद्धि उसको ब्रेक का काम करती है। बुद्धि अच्छी तरह काम कर रही है तो खराब विचार को रोक देगी, अगर काम ठीक नहीं कर रही है तो अलाउ कर देती। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं, मैं ऐसा सोचा तो नहीं था, क्योंकि सोचा और कर दिया, फिर बाद में फील होता है कि मैंने क्यों किया। इसीलिए बाबा कहता है दिव्य बुद्धि चाहिए, यानी जितनी हमारी बुद्धि अच्छी तरह काम करती वो ब्रेक लगाती है और खराब विचार रोक लेती है। तो मेडिटेशन का अर्थ है ऊर्जा, विचारों में ऊर्जा पैदा करना, विचारों को दिशा देना, विचारों को फोकस करना। इसीलिए कहा कि कंट्रोल फोकस इज लाइक ए लेजर बीम, जिसका फोकस क्लियर होता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है, और वो फोकस फिर अपने शरीर में ले जाओ या जीवन के किसी भी क्षेत्र में ले जाओ, आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए गीता में बताया गया श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का गेम दिखाया गया, अर्जुन अकेला नहीं कर सकता कुछ और श्री कृष्ण अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों का कॉम्बिनेशन बताया। श्री कृष्ण आत्मा है, पांच इंद्रियां अर्जुन है। श्री कृष्ण आत्मा ठीक काम कर रही है तो अर्जुन का तीर निशाने पे लग रहा है। आपने देखा पांडव कौरव की लड़ाई कैसे दिखाई, तीर निकालता है महावीर, तीर को कहां रखता है, तीर को सीधा नहीं छोड़ता है, तीर को पहले कहां रखता है, यहां रखता है, फिर तीर को छोड़ता है। दूसरा महावीर भी तीर निकालता है, यहां रखता है और छोड़ता है, दोनों तीर मिलते हैं और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो घुस जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी ये लड़ाई विचारों की चल रही है, पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार। मेजर प्रॉब्लम आदमी का कहां आता है, दो चीजों। एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदमी का क्या है कि वो शांत बैठ नहीं सकता। अगर शांत बैठ जाए तो सब आ जाए, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शांत बैठ ही नहीं सकता। दूसरा, जो दूसरे फिलोसोफर ने कहा क्यों नहीं शांत बैठ सकता, लड़ाई कहां चालू होती है, मैं क्या हूं और मैं अपने को क्या दिखा रहा हूं, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई प्रिटेंड टू, यही लड़ाई देहभान और आत्मिक स्वरूप की होती। मैं क्या हूं और मैं अपने को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादातर व्यक्ति मैच इसीलिए हारते कि वो दिखाने की उसमें अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते, मैं क्या हूं और मैं क्या दिखा रहा हूं, क्या प्रिटेंड कर रहा हूं। टेंशन का भी कारण क्या है, टेंशन का भी मुख्य कारण यही है कि हम अपने ओरिजिनल नेचर को न दिखाकर अपनी बाहरी पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हम हिंदी में कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो कितने अच्छे थे, बच्चे भाग रहा है चल रहा है, हर 5 साल 7 साल के बाद हमारे ऊपर कवरिंग चालू हो जाता है, अब मैं ये हो गया ये हो गया। 35 साल में आदमी की हालत नारियल जैसी हो जाती है। नारियल कैसा होता है, बाहर से सख्त रस्सी 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 तरह तरह की कवरिंग वो कर लेता, मैं ये हूं मैं ये हूं, किसी से पूछो क्या है, मैं ये हूं डायरेक्टर हूं, उसका कार्ड पूरा भरा रहता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन पैड में सब लिखा रहता है, मैं प्रेसिडेंट हूं मैं ये हूं, और खुद का नाम नहीं बताता, वो सब बता देता है, मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूं, मैं इसका प्रेसिडेंट हूं, मैं इसका प्रेसिडेंट हूं, पर ये नहीं बताता उसका नाम क्या है। तो हमारी स्थिति नारियल जैसी हो जाती, इसीलिए हिंदी में कहते हैं नारियल का अर्थ हुआ ना रियल, ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूं, आर्टिफिशियल हूं, तो बाहरी पर्सनालिटी आ जाती। और इसीलिए बाबा ने जो मेन सीक्रेट सिखाया, नारियल से हमें क्या बनना है, रियल बनना है। रियल यानी मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, तो आपकी ऊर्जा चलती रहेगी, मुझे कोई कवरिंग नहीं चाहिए। ज्ञान में आने के बाद भी कभी कभी हम कवरिंग कर लेते हैं और उसके कारण भी बीमारी आती है। ज्ञान का अर्थ है मैं कोई भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं तो चमकती हुई सितारा हूं बस। ये कवरिंग हमारी नेचुरल है, ईज वाली है, और वो हमारी है। ये आत्मा के 7 गुण मैं हूं। देखो पहला गुण किसको चाहिए, आत्मा का पहला गुण क्या है, ज्ञान। और पहला ऑर्गन शरीर का कौन सा है, ब्रेन। मस्तिष्क को क्या चाहिए, ज्ञान। फिर दूसरा ऑर्गन शरीर का चेहरा, आंखें कान मुंह नाक, 5 इंद्रियों में से मुख्य इंद्रियां यहां। इसको कौन सा आत्मा का गुण चाहिए, चेहरा कब चमकेगा, आंखों में चमक कब आएगी, वाणी में मिठास कब आएगी, जब दूसरा गुण आत्मा का पवित्रता, प्यूरिटी। प्यूरिटी का अर्थ केवल बाहरी प्यूरिटी नहीं, मनसा वाचा की प्यूरिटी, अंदर और बाहर एक जैसा, किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव भावना नहीं। जो बाबा कहता है, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना, शुभ भावना शुभकामना। बस जो इस साल की सातों मूल्यों में चला, सबसे अच्छा हथियार हमें दिया है शुभ भावना शुभकामना हर एक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं हर घटना न्यूट्रल है, पर जब हम किसी घटना को इमोशनल टच दे देते हैं तो वो बीमारी पैदा करती है। सिंपल एग्जांपल, आप मैच देख रहे हो, क्रिकेट का मैच देख रहे हो, मैच देख रहे हो अच्छा है, पर मैच में कोई जीता और हारा, देखा गया कि कभी कभी जीत भी हार्ट अटैक दे देती है और हार भी हार्ट अटैक दे देती है। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें मेंटल टच दिया। पर मैच को मैच जैसा देखो, कुछ होगा, जीता ठीक है, हारा ठीक है। इसीलिए बाबा ने कहा कार्टून शो चल रहा है, और हर घटना को कैसे देखो, कार्टून जैसा। कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, कार्टून बहुत अच्छा है, इसका पार्टी ऐसा है, तो क्या करोगे आप, उससे झगड़ा करेंगे? विलन विलन का पार्ट करेगा, हीरो हीरो का पार्ट करेगा। तो प्यूरिटी। तीसरा ऑर्गन फेफड़ा। फेफड़े को क्या चाहिए? पीस, शांति। जितना यहां शांत होंगे सांस ठीक चलेगी। हृदय को चाहिए प्यार, लव। आंतों को चाहिए खुशी। इसीलिए अगर खुशी नहीं मिलती तो लोग कहां निकालते हैं खुशी? खाने से। खाने पे कंट्रोल नहीं रहेगा, क्यों खा रहे हो? खुशी मिल रही है। इस साथ नेक्स्ट है शक्ति। हड्डियों को और मसल्स को चाहिए शक्ति, पावर। और छह चीजें अच्छी है तो सातवीं चीज आनंद निकलता रहता है, फ्लो करता है। इसीलिए सात गुणी हम हैं, और सात गुण में से कोई भी गुण कम होता है तो उसके अपोजिट वाला बढ़ जाता है। हर व्यक्ति में एक गुण डोमिनेंट रहता है और हर व्यक्ति में एक विकार डोमिनेंट रहता है। अपने एक गुण को पहचान लो कि मेरे में कौन सा गुण अच्छा है, उसको बढ़ाते जाओ, उसको सेवा में यूज करो। जो बाबा ने कहा कि हर आत्मा में एक अच्छा कोई सा गुण या शक्ति है, एक विशेषता है, उसको लिखिए, उस विशेषता को पहचानिए और उस विशेषता को अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने सेवा क्षेत्र पर यूज करिए। आप देखेंगे दूसरे नेगेटिव विकार खत्म हो जाएंगे, दूसरे गुण भी आप में नेचुरल आने लगेंगे। तो योग का प्रयोग का अर्थ है एक विशेषता को लेकर पहचानिए और उसको यूज करिए, चाहे खाना बनाने में, चाहे जॉब में, चाहे किसी भी प्रोफेशन में। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई लेबोरेटरी चाहिए, बाहर वाली लेबोरेटरी। योग का प्रयोग का अर्थ है कि जो ड्यूटी परमात्मा ने मुझे दी है संगम पर, जिस जगह दी है, जहां दी है, उसको अच्छी तरह से और करना। हर दिन मेरा नवीन हो, हर दिन जब मैं सुबह उठूं तो उस दिन को कैसे अच्छा बनाऊं। नहीं तो कई बार सोचते हैं लोग, अरे मैं सरेंडर हो जाऊं तो तब मैं अच्छा योग करूंगा। कई कहते हैं मैं यहां आ जाऊं तो मेरा योग अच्छा होगा। अब ऐसा हो सकता क्या? अगर मेरा योग वहां अच्छा नहीं लगता तो यहां भी अच्छा नहीं लगेगा। जहां भी हूं, जिस परिस्थिति में हूं, चाहे सब नेगेटिव है मेरे ऑफिस में, मैं एक उन 100 नेगेटिव्स को चेंज करूं, तभी बाबा ने मुझे वहां पैदा करके भेजा है। तो अपने पार्ट से हम झगड़ा ना करें, पार्ट को एक्सेप्ट करें कि जो हूं, जैसा हूं, जहां हूं, बहुत अच्छा पार्ट है, इसी पार्ट को मुझे अच्छा बनाते जाना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पार्ट को अच्छा बनाएंगे, रिफाइन करेंगे, महीन करेंगे, तो महीनता वाला ही महान बन सकता है। 21वीं सदी वही है जो क्रिएटिव है, जो नई चीज मार्केट में लाता है। और क्रिएटिविटी कैसे आती है? जब हम क्रिएटर से हम अपने को कनेक्ट करते हैं तो क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाती है। और दिन में 5 बार 6 बार 1-1 मिनट प्रैक्टिस करें, जब समय मिले क्रिएटर से कनेक्ट करो, वो क्या कह रहा है उसकी सुनो। अभी तक हम खुद की सुनते भी नहीं है, दूसरों की सुनते आए। अब संगम पर क्या है, मैं अपनी नहीं अपनी सुनकर उससे कनेक्ट करूं और फिर वो जो बोले वो करूं, तो आप देखेंगे कि आप में भी नवीनता आती जाएगी। क्योंकि वो जो बोलेगा वो करूंगा, उसमें प्रसन्नता मिलेगी। एक लास्ट खत्म करते हैं कि हर एक की प्रसन्नता लेवल अलग अलग रहती है। धनी की प्रसन्नता कैसे होती है, धन से उसको जितना मिलेगा खुद खुश होगा। जो अहंकारी होता है वो अपने अहंकार से खुश रहता है, जो मूर्ख होता है वो हां में हां मिलाकर खुश होता है, जो पुरुषार्थी होता है वो सफल होने में खुश होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है वो परोपकार करने में उसको खुशी मिलती है, जो दुष्ट होता है दूसरे को दुख देने में उसको खुशी मिलती है, और सबसे अच्छा क्या है, जो प्रभु की मर्जी से राजी रहता है उसको सदा प्रसन्नता मिलती रहती है। इसीलिए बाबा के शब्द है नाराज नहीं होना। नाराज का अर्थ है राज को समझ लिया तो ना राज की जरूरत नहीं, हर चीज में खुशी मिलेगी। और उस खुशी को हम अपने सेवा क्षेत्र केंद्र पर, लेक्चर में, कार्य क्षेत्र पर कहीं भी यूज करेंगे तो आप देखेंगे सफलता मिलती जाएगी। और आजकल सबको चाहिए खुशी। देखो आजकल खुशी इतनी गायब हो गई है कि लोगों को हंसने के लिए भी कहाँ जाना पड़ता है, हंसने के क्लब में जाना पड़ता है। आजकल सबसे बड़ा फेमस हो गया है लाफिंग क्लब, ब्रीदिंग क्लब, सांस लेने का भी क्लब और हंसने का भी क्लब। हंसने के क्लब में भी लोग पैसा देते हैं, हंसते हैं, वापस आते हैं, फिर सीरियस हो जाते हैं। तो हमें तो बाबा रोज क्या करता है, लॉफिंग इंजेक्शन रोज मुरली में दे देता है, हंसाता हैगा। सांस के लिए भी हमें कहीं क्लब में नहीं जाना है, अगर हम यहाँ शांत हो जाते हैं तो सांस भी ठीक चलेगी। आज सांस का प्रॉब्लम क्यों आ गया है, व्यक्ति जल्दी जल्दी करता है, यहाँ जल्दी करता है तो सांस जल्दी 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 जल्दी। तो इसीलिए जितनी कम सांस लेंगे उतना ज्यादा जिएंगे। और कम सांस कैसे लेंगे, जब हम यहाँ शांत हो जाएंगे। कहते हैं ना सांसों श्वास तुम्हारी जिंदगी, सांसें गिनी हुई है। अब आज का व्यक्ति इतना जल्दी करता है कि जल्दी जल्दी सांस लेता है तो जल्दी ऊपर चला जाता है। इसीलिए सांस को कम से कम करें। तो उसका सीक्रेट क्या है, यहाँ शांत रहेंगे तो सांस रहेंगे। तो योग का प्रयोग कोई भी बाबा का बच्चा कहीं भी कर सकता है। जिसको जो ड्यूटी दी है, पानी पिलाने की, खाना बनाने की, रोटी देने की, कोई भी देखो आप उस क्षेत्र में देखो, इतना अच्छा खाना खिलाओ, इतना अच्छा तरीके से पानी पिलाओ, इतनी अच्छी मुस्कान, और कुछ नहीं कर सकते। जो लास्ट सीक्रेट बताया, जब रोज घर से निकलो, सेंटर पे आओ, तो पहला अपना अंदर का चेहरा ठीक कर लो। जब घर से निकलो, चाहे कार्य क्षेत्र पे जाऊं, चाहे सेंटर पे आऊं, एक चीज लेकर चलो कि चेहरे की मुस्कान सबसे मिलो। जब जब घर से निकलो, जो भी रास्ते में मिले, जो भी मिले, सबको मुस्कान देते चलो, शुभ भावना देते चलो। वो तो कर सकते, आपके शुभ संकल्प उनमें परिवर्तन लाएंगे। देखो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है बतख, डक। डक कैसे पानी में तैरती है, पानी में जब तालाब में तैरती है तो डक के पांव नीचे रहते हैं और ऊपर क्या रहते हैं, पंख। पंख को ऐसे करती रहती है और बतख क्या करती है, देखती रहती है, इधर देखेगी इधर देखेगी और पंखों से करती रहती है। क्या कर रही है, पुरुषार्थ पानी के नीचे, किसी को दिखा नहीं रही है, अंडरग्राउंड, सरेंडर। सरेंडर का अर्थ क्या है, सर अंडर। दिखावा नहीं कर रही है, मैं योग कर रहा हूं। नहीं तो कई लोग दिखावा करते हैं, मैं योग कर रहा हूं, 4 घंटे योग की आंखें लेके बैठ जाते हैं। योग वो नहीं है, योग हमारा चलता फिरता है अंदर ही अंदर, किसी को पता भी नहीं लगे कि ये योग कर रहा है। अगर किसी को पता लगता है योग कर रहा है, यानी मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं दिखावा कर रहा हूं, किसी को पता नहीं लगे, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, और ऊपर क्या कर रही है, पंख, पंख से पानी को फेंक रही है, नेगेटिविटी को फेंकते जा रही है, जो भी आ रही है नेगेटिविटी झाड़ रही है और सबको हेलो कर रही है, हेलो 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 मुस्कुराते हुए। वही हमें करना, राजा बनना है तो जब हम घर से निकले सबसे मुस्कुराते हुए, शुभ भावना, शुभ कामना, इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो, देखो सब योग का प्रयोग होता जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई बड़ी चीज नहीं करना है, छोटी चीज एक एक रोज करते जाएंगे तो आप देखेंगे आप में भी वो आ जाएगा। तो लास्ट में खत्म करते हैं कि जब हम प्रभु के ऊपर सब कुछ निश्चय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की एनर्जी लेवल, शक्ति लेवल, खुशी बढ़ती जाती है, चिंताएं कम होती है। लास्ट में एक बहुत अच्छी स्टोरी से खत्म करते हैं कि जब हमारा बाबा के ऊपर निश्चय हो जाता है, खुद के ऊपर निश्चय रहता है, ड्रामा के ऊपर निश्चय रहता है, तो लाइफ एक गेम की तरह चलता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई, वो नाव में जा रहे थे नदी के इस पार से उस पार, नदी के बीच में बहुत तेज हवाएं आने लगी, तूफान आने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी डरने लगी, उसने डरते हुए अपने पति से पूछा, आपको डर नहीं लग रहा है? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने चाकू निकाला, चाकू उसके गले के ऊपर रखा, बोला डर लग रहा है? तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, चाकू चाहे कितना भी तेज है पर चाकू को पकड़ने वाला मेरा पति है और वो मेरे से प्यार करता है, वो मेरा नुकसान नहीं करेगा। ये सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देखो तूफान कितना भी खराब है, बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, पर उसको चलाने वाला कौन है? मेरा पिता है, परमात्मा है, वो मेरे से प्यार करता है, मेरे को नुकसान नहीं करेगा, तो डर काहे का। इसी तरीके से जिंदगी में भी जब हम संपूर्ण निश्चय से चलते हैं, कोई भी तूफान आएगा उसकी रक्षा वो करेगा। संगम पर हमारा काम नहीं है सेवा का टेंशन लेना, उसका काम है, उसके उससे चलते हैं तो सेवा के भी टेंशन नहीं आते और हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं उसको वो सफल करता जाता है। तो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं 5 मिनट के लिए। पहले अपने को चार्ज करें, दोनों हाथों को ऊपर करें, ऊपर खींचें, दोनों खींचें, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर लें और अपने मन में संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे में असीम ऊर्जा है। अब आराम से बैठें, सब तरफ से ध्यान हटाकर दो आंखों के बीच अपने खुद की गुफा में बैठ जाएं। मेरा खुद का लेबोरेटरी, खुद का कमरा दो आंखों के बीच है। यहां पर बैठकर मैं पूरे शरीर को चला रहा हूं, अपने अंदर की सभी कमजोरी, चिंताएं परमात्मा को देते जाएं, छोड़ते जाएं, सब कुछ सौंप दो, जाने दो।
सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
इसी ऊर्जा शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें, अनुभव करें मैं आत्मा ऊर्जा हूं। ब्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूं, मैं प्रकाश का पुंज हूं।
तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। दृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ, दृष्टि का श्रृंगार हूँ।
इस शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें, अनुभव करें, फील करें शरीर की हर कोशिका परमात्म शक्ति को ले रही है। हर कोशिका स्वस्थ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हृदय की गति ठीक है, शरीर स्वस्थ है।
शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल,
ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से।
एक सेकंड बिल्कुल नेचुरल साइलेंस में पूरे विश्व की आत्माओं को दुआएं दीजिए, दिल से दुआएं पूरे विश्व की आत्माओं को देते जाइए।
दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है,
वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आए। सांस अंदर और बाहर लें। ओम शांति।